अब यहाँ से आगे हम हजरत दाऊद और सुलेमान का किस्सा पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पर ये एक तकाबुल है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे फिरौन था, और अब यहाँ हजरत दाऊद और सुलेमान का जिक्र है। ये बता दिया गया कि जब अल्लाह ताला किसी को अपनी मार्फत दे दे तो वो हुकूमत की सतह पे भी पहुंच जाए तो वो नुकसान नहीं उठाएगा, लेकिन जब बगैर अल्लाह के तकवे और अल्लाह ताला की मार्फत के कोई नेमत मिलती है तो बस सफा वो चीज़ इंसान के लिए नुकसान का जरिया होती है। आइए देखते हैं आयत नंबर 15 से। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया था। कौन सा इल्म था ये? लफ्ज़ देखिएगा, इल्मा नकिरा है। जब लफ्ज़ अल इल्म आए, अल इल्म जो है ये मारिफा के लिए आता है, और वो खास इल्म यानी शरीयत का इल्म होता है, लेकिन चूंकि यहाँ नकिरा में है तो इससे मुराद है दीन और दुनिया का इल्म। सवाल पैदा होता है कि क्या दिया गया था? तो हजरत दाऊद को लोहे की सनदकारी सिखाई गई थी, यानी आयरन स्मिथ थे, और पहली दफा इन्होंने जिरहें बनानी सीखी। इससे पहले दुनिया में ये तरीका नहीं था। अल्लाह ताला ने इनके हाथों में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी कि जिसके जरिए लोहा नरम होता था, कड़ियाँ बनाते, चेन्स बनाते, फिर चेन्स को बुनकर तो ज़रा टाइप की एक चीज़ बनाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनियावी इल्म कौन सा मिला था? परिंदों की बोलियों का, जिसका जिक्र आगे आएगा। दूसरा इल्म कौन सा था उनको? इसका इजहार इनकी इस दुआ से है जो इसी आयत में आगे आ रही है। वकाला, और इन दोनों ने कहा, काला तस्निया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें हैं उस जात की जिसने, फद्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, कि हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई। ये था वो इल्म, मारफत का इल्म, अल्लाह ताला की मोहब्बत का इल्म है। जब इंसान को अल्लाह की मारफत होती है ना, तो दुनिया की छोटी से छोटी नेमत उसको मिले या बड़ी से बड़ी नेमत मिले, लेकिन वो इसको अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। दूसरी बात, यहाँ आपको नबी सल्लम की एक हदीस भी याद आ जाएगी बात सुनकर, कि अकलमंद वो है जो दुनियावी मामलात में जब उसको कोई तकलीफ पहुंचे तो अपने से नीचे वालों को देखे जो इससे भी ज्यादा आजमाए हुए हैं, या दौलत के मामले में खुद को परखे तो अपने से कम वालों को देखे, और जब दीन का मामला हो, अमल साले का मामला हो, तो अपने से ऊपर वालों को देखे। इनका ये कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बात कॉमन है, हर एक जो अल्लाह का बंदा है वो तो शुक्र ही करेगा, लेकिन ये कह देना कि अल्लज़ी फद्दलना अला कसीर मिन इबादिहिल मोमिनीन, इसमें क्या छुपा हुआ है? कि उसने मुझे बाकी बंदों पर फजीलत दी। क्या मतलब? कोई ज़ाती बड़ाई की बातें कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है हम बहुत बड़े बन गए और दूसरों से आले? नहीं, असल में इसमें उनका अल्लाह ताला के हाँ शुक्र का मुकाम दिखता है कि अल्लाह तेरे बहुत सारे बंदे हैं और उनको तूने कुछ नेमतें दी, कुछ सलाहियतें दी, लेकिन हम तेरा शुक्र किस मुंह से करें कि तूने तो हमें वो नेमत दे दी जो तूने अपने बहुत सारे बंदों को नहीं दी। हकीकत है कि बंदा मोमिन का दिल शुक्र के जज्बों से भरा होता है। उसके दिल को निचोड़े ना तो खून की जगह शुक्र गिरेगा। यही कैफियत एक इंसान को अल्लाह ताला का करीबी बंदा बनाती है। दोनों बाप बेटे कितने खुशकिस्मत थे, एक दूसरे के मिशन के राही थे, और यहाँ से ये भी पता चलता है कि इल्म अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। ये जिक्र नहीं किया, आगे भी आएगी दुआ, उसमें भी आप देखेंगे कि अल्लाह खूबसूरती दी, हुकूमत दी, रब्बी औज़ेनिया नशकुर नेमतकल्लती अनमत अलैया वाला वालिदैया। तो सब कुछ हो दुनिया की चीज़ों में, इल्म ना हो तो इंसान मुफलिस और कल्लाश है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस दुनिया को बरतना कैसे है। याद रखिए कि दुनिया की जितनी भी नेमतें में अल्लाह ताला ने दी है ना, दीन का इल्म उन नेमतों को बरतना सिखाता है, इंजॉय करना सिखाता है। असल इंजॉयमेंट उस बंदे की है जिसको अल्लाह ने दुनिया की नेमतों के साथ समझ भी दे दी और वो उसको इंजॉय करता है। और जब ये दूसरी नेमत नहीं मिलती तो सब कुछ होने के बावजूद लोग रोते धोते ही रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है? कि वो अपने आप को अल्लाह की नज़रों से भी और इंसानों की नज़रों से भी गिरा हुआ महसूस करवाते हैं। और ये भी एक बात याद रखने की, और वो क्या है कि एक इंसान जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उतना उसकी नेमत को बढ़ाएगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लिखा कि जिस बंदे को अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी और वो फिर उस पर अल्लाह का शुक्र करे तो इसकी हम्द इन नेमतों से बहुत अफजल है। देखो खुद किताबुल्लाह में ये नुक्ता मौजूद है। फिर आपने यही आयत लिख कर दी कि इन दोनों पैगंबरों को जो नेमत दी गई थी इससे अफजल नेमत और क्या होगी। कितनों को बात समझ आई है? इसको आप एक और अंग से भी समझ सकते हैं, गालिबन हजरत अय्यूब के बारे में या हजरत यूनुस के बारे में कॉल किया जाता है मंसूब, कि वो कहते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र अदा करना ये भी तो बताते खुद एक नेमत है, तू ये बता कि इसका शुक्र कैसे करूं। यानी एक चेन रिएक्शन है। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि जैसे एक आईना है, उसके आगे आप एक और आईना रख दें तो आप देखेंगे आईना दर आईना लंबी दीवार आपको दिखेगी, शीशों में शीशे। ये शुक्र है। एक नेमत आपको मिलती है ना, आप उस पर भी शुक्र कर नहीं पाते, वो शुक्र भी एक दूसरी नेमत बन जाता है। उस नेमत का शुक्र करेंगे तो उससे बड़ी नेमत, उससे बड़ी नेमत, और होते होते आप नेमतों में इस तरह घूम जाते हैं कि आप अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस करते हैं। दुआ कीजिए कि हमारे दिल की ये कैफियत हो जाए। आप एक नया जन्म लेंगे, बिलीव में। मैं हर एक को बड़े यकीन से कहती हूँ, पता नहीं मुझे इतने यकीन से कहना भी चाहिए कि नहीं, अल्लाह नोज दी बस, लेकिन मेरे जहन में ये आता है कि ये नहीं हो सकता कि एक सच्चा ईमान हो, मोमिन हो और दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, जो भी है, लेकिन उसका दिल खुश है। स्माइल, अंदर का हल्कापन, रिलैक्सेशन, उसको हर तरफ नेमते दिखे, उसे ऐसे लगे कि मेरी जिंदगी खुशियों का ठिकाना है। हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं? क्या मैं अपने नसीब पे मुतमईन हूं? अल्लाह ने जो मुझे दिया वो ठीक था मेरे लिए? क्या मैं वो डिजर्व करती थी? इस तरह के छोटे छोटे सवाल करते जाएं करते जाएं, आपको अपना असल दिखेगा। और बहुत सारे लोग सिर्फ नाशुक्रियों की सजा भुगतते हैं और साथ ही साथ तकदीर पर राजी ना होने की। तो जरूरत है इस बात की कि इंसान हमेशा अपने आप को अच्छे रंग में देखे, जो मिला। और ये अच्छा रंग कैसे देखेंगे? अपने आप को छोटा कर लें। अल्लाह मैं तो इस काबिल ही नहीं थी। जब कभी हम शिकवे करते हैं ना, अंदर मुंह से कम लोग करते हैं, अंदर बड़े होते हैं, रोते झोते, मेरे साथ क्यों हुआ, सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है दिस, तो इसका अंदर ये कि मैं तो बहुत बड़ी थी, ये आपने क्या कर दिया, मैं तो डिजर्व नहीं करती थी, ये आपने पता नहीं क्या मेरे साथ कर दिया। और अगर अंदर बंदगी का रंग आ जाएगा तो आप कहेंगे अल्लाह सस्ती छुट्टी, मैं तो इससे भी बुरे हालात की कायल थी। सच पूछे, जो खाना अभी हम खा के बैठे क्या हम इस काबिल थे? जिस गाड़ी में हम यहाँ बैठ के आए क्या मैं उस काबिल थी? जिस घर में हम गर्मी सर्दी के सारे इंतजाम के साथ बैठते हैं क्या इस काबिल हैं? मुझे तो नहीं अपना आप दिखता। अपनी एक एक नेमत को क्वेश्चन मार्क बना के पूछ लीजिए, क्या मैं इसको डिजर्व करती थी? और आप देखेंगे कि ये चीज फिर आपकी नेमतों को और ज्यादा बढ़ा देगी। फिर आपको अल्लाह का कुर्ब मिलेगा और आप सोचेंगे कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मोमिनीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ भी आपको याद आ रही होगी। आपने फरमाया कि किसी मुसीबत सदा को देखकर जो ये दुआ पढ़ ले कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलना अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफदीला, कि तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने मुझे बुजुर्गी दी उन सब से जिसमें उसने तुम्हें मुब्तला किया, तो फरमाया अल्लाह ताला उसको उस तकलीफ से बचा लेगा। तो कभी किसी दुखी परेशान बीमार जहनी जिस्मानी रूहानी तौर पे परेशान शख्स से अगर आपका वास्ता पड़े तो फौरन ये दुआ पढ़ लिया करें, और इनसे इंशाल्लाह फील करेंगे कि आपके अपने अंदर अपनी नेमतों का एहसास ज्यादा होगा। करना क्या है? अब आप कहते हैं अच्छा इसका अंदर कि सबके हालात बड़े अच्छे होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो मर्जी है हालात की सख्ती दिल पे नहीं आती, दिल खुश रहता है और अल्लाह ताला इंसान को उस पर रखे। आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई आपको बहुत प्यारा है, वो आपको कोई तोहफा देता है, खुशी तो बहुत हुई तोहफा सोच के, खोला तो तोहफा इतना अच्छा नहीं लगा, इमेजिन करें। लेकिन आप क्या सोचते हैं, उसने तो दिया ना, अच्छा नहीं लगा, उसको पसंद था तो उसने दिया। अब आप इस इमेजिनेशन को अल्लाह पे ले, अल्लाह से मोहब्बत है ना, तो चाहते हैं कि अल्लाह कुछ दे। खुशियों के तोहफे तो अल्लाह रोज ही देता है, गम तो कभी आता है और कभी भी नहीं आया अल्लाह के हुक्म से। बीमारी परेशानी तो कभी आती है और कभी भी नहीं आई, कभी आ जाए तो कहीं ये आज ऐसा तोहफा आ गया जो मुझे नहीं सही लग रहा लेकिन अल्लाह ने मुझे दिए, इसमें खैर ही होगी क्योंकि शर में से खैर निकलती है। ये वो शुक्र का सर चश्मा है जिससे खुशियां भरी जिंदगी फूटती है। खैर आप देखिए कितने खुशकिस्मत हैं बाप बेटे, अल्लाह ने उनकी नमाजों का जिक्र नहीं किया, रोजों से, हज से, उनकी तहज्जुदों और तरावियों से नहीं शुरू किया, किस चीज से जिक्र किया? शुक्र से। क्यों? सिंपल सा जवाब है, कोई देना चाहता है? अल्लाह ने उस एक जज्बे का जिक्र कर दिया जो ये सारे काम कराता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र सारे दीन का खुलासा है। अल्हम्द क्या है? तम लौल मीजान, हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मीजान को भर देगा। तो खुरच के फेंके अपनी महरूमियों को, तकलीफों को, चीयर, खुश, स्माइली, फ्रेश एक नई जिंदगी ले। कल से आपको दुनिया रोशन लगेगी, आपको लगेगा काफी हालात बेहतर हो गए। नहीं, हालात नहीं बेहतर हुए, आप बेहतर हो गए। फिर आप देखिएगा कि इबादत में जो मजा है और जो खुशियां हैं उसमें। खैर अब आगे चलिए, देखिए अब इन दोनों का जिक्र है, क्या थे, कौन थे, इसको हम बात करेंगे। वारिस सुलेमान दाऊदा, और वारिस हुआ सुलेमान दाऊद का। आप जरा इस आयत पे नजर जमाए, मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ, मेरी गलती निकालिएगा। वारिस सुलेमान दाऊदू, क्या तर्जमा होगा? जी सुलेमान की पेश बता रही है कि वारिस बना सुलेमान, किसका बना? दाऊदा। अरबी जुबान में एक जुमला याद रखें, कुल्लु फाइलुन मरफूउन, बोले कुल्लु फाइलुन मरफूउन, हर फाइल मरफू यानी पेश वाला होता है और उसका ऑपोजिट भी है, लेकिन आज इतना ही याद कर लें। तो यहां तर्जमा बदल जाता अगर आप सुलेमाना को सुलेमान कहते और दाऊदू कहते। और वारिस हुआ सुलेमान दाऊद का, कौन थे सुलेमान और दाऊद? चूंकि इनका जिक्र आप बाज़ब्ता तौर पे पहली दफा हमारे सामने है तो थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद बनी इसराइल के उन पैगम्बरों में से थे कि जिनके दौर में बनी इसराइल का अरूज शुरू हुआ था। पीछे हमने बात की, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं जहन में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए से बनी इसराइल मिस्र में आई, कुछ साल बल्कि 40 साल तक वो वहाँ रही, इज्जत से रही। हज़रत यूसुफ का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद उनको शाही मेहमान होने की हैसियत से इज्जत मिली, लेकिन अपनी करतूतों की वजह से बिल आखिर वो मगलूब हुए। मिस्र में फिरौनी ख़ानदान ने हुकूमत की, तो जो पहले से ज़ेर इक्तदार हुकूमत थी यानी बनी इसराइलियों की, उनको कैदी बना दिया। सब कैदी बन के इधर उधर जेलों में डाल दिए गए। ये वो वक्त था कि जो बनी इसराइल का बिल्कुल डार्क किरा था, दुनिया से तौरात का नाम ख़त्म हो गया, बैतुल मक़दस ढा दिया गया। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो 100 साल तक सुलाए रखे गए वो जागे, उन्होंने फिर अपने हाफ़ज़े से लोगों को तौरात बताई, दोबारा रिवाइवल हुआ, इनको पता चला हम क्या करते हैं। उस दौर में फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और हज़रत दाऊद कौन थे? एक आम अदना दर्जे के सिपाही थे। तालूत और जालूत का वाक़या याद कर लीजिए दूसरे पारे के आखिर में। कहते हैं कि तालूत का जो लश्कर था उसमें इनको देखें तो कद भी इनका छोटा था और गैर मारूफ थे, बकरियां चराते थे। जालूत जो दूसरी कौम का सरदार था यानी दुश्मन, वो मुकाबले के लिए निकला और उसने, जिसको कहते हैं ना हुर्रा कर मुका, कौन है जो मेरे मुकाबले पे आए? कोई भी नहीं आया। याद रखिए, नारे लगाने, बातें करनी, आहें भरना और बात होती है, और मैदान जंग में कूदना, अमल के लिए आना ये और बात होती है। कोई ना उठा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम निकले। चूंकि कद के छोटे थे, कोई ज़ाहिर इतनी पर्सनैलिटी नहीं लगी, तो जालूत ने तकब्बुर से कहा, तू तो मेरे मुकाबले का नहीं है, तेरे साथ मैं नहीं मुकाबला करूंगा। यानी उसने अपनी बेइज्जती समझी कि कोई बड़ा बंदा मेरे सामने है, कोई बिग चैलेंज। कोई नहीं आया, उसने दोबारा दावत दी, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम बाहर आए। उसने फिर कहा, नहीं मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, तुझे लेना। फिर तीसरी बार जब दावत दी, फिर पूरे लश्कर में, और आपको तो लाखों का लश्कर था, याद करें वो वाक्या, अल्लाह ने उनको कैसे आजमाया तालूत के जरिए। निकले थे 1 लाख से जायद, 4,000 रह गए उस नहर के पानी को पीने के वक्त, इल्ला गुरफतम मिन जदी, और उसमें से 4,000 में बिल आखिर 313 की एक छोटी सी जमात थी जिसमें से दाऊद चुने गए। चैलेंजेस को कबूल करना, अल्लाह की तरफ से आए हुए फैसलों को लेना, کہ ہم کریں گے یہ کام، اللہ ہم سے کرا لے، یہ زندہ دلوں کا کام ہے. جالوت کو قتل کیا داؤد نے، قتل داؤد جالوتا، کیا آنا چاہیے؟ کس نے کس کو قتل کیا؟ قتل داؤد جالوتا، ٹھیک ہے. تو وہ قتل کیا، اب اس میں تالوت علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، کہا اچھا یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے، اس کو قریب کیا، اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. جب شادی کر دی تو داؤد علیہ السلام ایک ادنا چھوٹے سے خاندان سے، خاندان کہہ لیجئے یا گروپ سے نکل کر شاہی خاندان میں آ گئے. کچھ سال کے بعد تالوت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو مسند پہ بیٹھ گئے حضرت داؤد، تو بادشاہ بن گئے. یہ ہے تلکل یا منداوی لوہا بین الناس. بعض دفعہ غربت سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ دولت میں لے جاتا ہے، دولت سے اٹھا کے غربت میں لے جاتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان تھے. کہتے ہیں کہ ان کے 19 بیٹے تھے لیکن یہ سب سے چھوٹے داؤد تھے. ان کا اصل نام جو عبرانی زبان میں وہ سولمن تھا، جو عربی میں سلیم لفظ کے ہم معنی ہے، سلیم جو پیچھے بھی پڑا ہے. 965 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً ایک صدی پہلے حضرت داؤد کے یہ جانشین بنے، اور 926 قبل مسیح تک تقریباً 40 سال تک یہ حکمران رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت بھی دی تھی، اور حکمرانی ان کی کیا تھی؟ آج کے دور میں فلسطین، مشرقی اردن یعنی جارڈن، پیلسٹائن، جارڈن اور سیریا کا کچھ حصہ ان کی سلطنت میں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، جس میں سے یہاں جو بات کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ وارث بن گئے داؤد کے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس ورثے کی بات ہے؟ علم کے ورثے کی بات ہے. نوٹ کیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بن گیا. نبیوں کا ورثہ صدقہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا مال صدقہ کر دیا جاتا ہے، درہم اور دینار وہ نہیں چھوڑتے. لہذا یہاں ورثے سے مراد علمی ورثہ ہے. نوٹ کیجئے، دولت کا ورثہ سڈنلی اور اچانک مل جاتا ہے، علم کے ورثے کے لیے جان مارنی پڑتی ہے. اتنی ان کی اولادوں میں سے صرف سلیمان کی معروف ہیں. کبھی آپ نے سوچا؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے یوسف مشہور ہے، علم کا صدقہ. جب ہم اپنی نسلوں میں علم چھوڑ جاتے ہیں نا، تو اصل میں وہی اولاد آگے ہمارا صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، اور وہ ہمارے لیے باقیات و صالحات بنتی ہے. تو یہاں وراثت سے مراد یہ تھا کہ وہ مشن انہوں نے اٹھا لیا جو باپ کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نوری سمن ما ترقن صدقہ، ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑتا ہے وہ مسلمانوں کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو بکر صدیق اس کے راوی ہیں. تو لہٰذا اپنی زندگی میں بیٹے کو اس قابل کر گئے کہ ان کے بعد مشن کو اٹھا لیا. آج بھی مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا نبی کی امت ہونے کا جو ایک سہرا ہمیں ملا، ہم اپنے بچوں کو اس سے اویئر کر کے جا رہے ہیں؟ اور کیا حقیقت میں ہمارے بچے ہمارے اس علمی ورثے کے مالک ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں ہاں میں اسی لیے انگلش کی کتابیں خریدتی ہوں. ایسی مائیں میں نے دیکھی ہیں، خود اردو اچھی لگتی ہے پڑھنے میں لیکن انگلش لیتی ہیں. کیوں؟ کہتی ہیں بچے پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے. آپ ان کو اردو سکھائیں اور آپ اپنی زبان سے ان کو بھی شوق دلائیں. آپ کی چھوڑی ہوئی انگلش کتابیں وہ نہیں پڑھیں گے، ہاں جب وہ خود اپنے شوق سے انگلش کی خریدیں گے پھر پڑھیں گے. بہت ناسمجھی کی باتیں ہوتی ہیں کہ زندگی میں تو فکر نہ کی جائے ان کی، یا کی بھی جائے تو اس درجے کی نہ کی جائے، اور بعد میں سوچیں کہ ہماری موت کے بعد ایسا ہوگا. تو حضرت داؤد ان کے کہتے 19 بیٹے تھے، 19 بیٹوں یا بچوں کا ذکر آتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نبوت کے معاملے کو آگے رکھا. حضرت سلیمان کی وفات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان تقریباً 1700 سال کا فاصلہ، یعنی 1700 ایئرس کا فاصلہ. یہود کہتے ہیں کہ یہ 1400 کا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی عمر تقریباً 50 سال کے برابر تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بنی اسرائیل میں نبوت اور بادشاہت جمع کر دی تھی، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بھی وراثت تھی، جو اللہ نے ان کو نبوت اور حکمت اور ساری چیزیں دی تھی، اس کو اب اللہ تعالیٰ نے سلیمان تک بھیج دیا. اور یہ ایک بہت بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے کہ جب بیٹے کو ہی باپ کی جگہ مل جائے دین کے ناطے سے بھی. وقالا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ سلیمان نے. یا ایوہ الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں. منطق کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے لفظ ہے منطق، تک نہیں کہیں گے آپ، منطق. نطق کہتے ہیں بولنے کو. وما ينطق عن الهوى، سورۃ نجم میں بھی آتا ہے کہ یہ نبی خود سے نہیں بولتا. تو نطق اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، بولنے کی طاقت. یہ جو ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دائیہ رکھا ہے نا بولنے کا، اس کی طرف اشارہ ہے. اتیری پرندوں کی، یعنی ہمیں سکھائی گئی پرندوں کی بولیاں. کیا مطلب ہے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تشریف، عزت کے لیے. انبیاء کرام ہوں یا پہلے دور کے جو بادشاہ تھے، وہ اپنے لیے عموماً اسی قسم کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں ہم جمع کا نہیں ہے، عزت کا ہے. بس اتنا سا لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ پورا پڑھ کے پھر اس پہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کہا کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں. وہ اوتین من کل شیء، اور ہمیں دی گئی ہر چیز، ہر طرح کی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. ان حاصل هو الفضل المبین، اور یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے. کیا رنگ دکھ رہا ہے آپ کو حضرت سلیمان کا؟ شکر، ہر بات میں شکر. واوتینا من کل شہین میں کیا دکھ رہا ہے؟ شکر گزاری، سب کچھ ملا. ہم کہتے ہیں یہ تو ملا ہے، بس وہ بھی مل جائے نا تو بڑا اچھا، یہ سب ٹھیک ہو گیا، بس اب وہ بھی ٹھیک ہو جائے نا تو پھر تو ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں. نیور، کبھی بھی نہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. اب اس نعمت کی دلیلیں دی جا رہی ہیں. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، اور جمع کیے گئے سلیمان کے معائنے کے لیے ان کے تمام لشکر، جنوں کے اور انسانوں کے. والطیری، اور پرندوں میں سے. تین قسم کی ان کی ٹیمیں تھیں، انسانوں کی، جنوں کی اور پرندوں کی. فہم یوزعون، اور اسی طرح سے وہ منظم کیے جاتے تھے. یہاں سے اب آپ ان کا کام کرنے کا طریقہ دیکھیں گے. ہر قسم اور ہر جنس کے لشکر کی الگ الگ جماعتیں بنا کر ان کو منظم کیا گیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب رولر شپ میں آئے، حضرت سلیمان ہوں یا بعد میں صحابہ ہوں، تو وہ کیوں آئے؟ کیونکہ وہ منظم تھے. کلاسیفیکیشن تھی، جنوں کی الگ جگہ ہیں، انسانوں کی الگ ہیں، پرندوں کی الگ ہیں. بعض لوگوں نے بڑی سر کھپائی کی ہے ان تین لفظوں پہ. آپ کو پتا ہے جن سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت دیو کامل قسم کے انسان، بڑے بڑے، یعنی جس کو آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، بہت ٹال قسم کے لوگ. اور اس کے بعد انسانوں میں وہ لے لیتے ہیں عام انسان، اور جو پرندے ہیں وہ کہتے ہیں پریاں. مطلب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نہ تو پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور نہ جن ان کے قابو میں تھے، اور وہ معجزوں کا انکار کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی، ایک بڑا معروف فرقہ ہے آج کے دور میں، حدیث کا بھی منکر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوئے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کے یہ جو سمندر کے پھٹنے کی باتیں، وہ اس کی تاویلات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوتا. کیسے؟ کہتے ہیں جنوں سے مراد پہاڑی قبائلی علاقے کے لوگ تھے، بڑے اسٹرانگ تھے، اس لیے ان کو اللہ نے یہاں جن کہہ دیا جی. کیونکہ جن تو بڑی مشکل ہے انسان کی کوشش میں آ جائے. اور طیر سے مراد کہتے ہیں گھڑ سواروں کے دستے، جو پیدل دستوں کی نسبت بڑی تیزی سے چلتے تھے. اور جو پرندوں کی بات الگ سے کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پریاں تھیں، پریاں اور عورتیں. بالکل جھوٹ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے قبضے میں جس کو چاہے دے سکے، اس لیے وہ ساری بحث ہی بیکار ہے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے. اور آگے بھی دیکھیے گا، چونٹیوں کے بارے میں انہوں نے جو بحثیں کی کہ چونٹیوں کی آواز کیسے سن سکتے ہیں، وہ تو بس وہ کوئی ایسے ایک نمل نام کا قبیلہ تھا، اس کا ایک فرد تھا، تو اس کی باتیں انہوں نے سنی تھی. ایسی کوئی بات بھی سنے نا تو اس کو ٹریش کر دے. اس لیے کہ یہ اس بات کی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اللہ یہ کر نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ لا کل شیء قدیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بولیاں تو تمام جانداروں کی سکھائی تھیں ان کو، لیکن پرندوں کا یہاں خاص ذکر کیا گیا کیونکہ پرندے سائق کے لیے ہر وقت ساتھ ساتھ ان کے رہتے تھے. اور پرندوں کے ساتھ آگے ہم دیکھیں گے کہ چونٹیوں کی بھی بولی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انیوژل قسم کی نعمتیں اس دور کے مسلمان حکمران کو دی تھیں. اصل میں اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان آرگنائزڈ ہوں گے، इल्म साथ उनका ताल्लुक होगा, उनके अंदर क्लासिफिकेशन होगी, हर एक को हक देंगे, तो अल्लाह ताला उनको दीन के साथ साथ दुनिया की भी इज्जत देगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, आज हम मुसलमान हैं, कितने हैं? अरबों में है ना, अरब यानी लाख करोड़ से भी ऊपर। इतनी मस्जिदें, इतने खुतबे, लेकिन एक सवाल उठता दिमागों में हमारे बच्चों के भी और हमारे भी, कि फिर इतने होने के बावजूद मुसलमान जवाल पजीर क्यों है? मुसलमान होने का मतलब हमारे जहनों में रच बस गया डिसऑर्गेनाइज्ड। किसी मस्जिद में चले जाएं, जहाज में चले जाएं, किसी दुनियावी स्कूल, चाहे वो इस्लाम के नाम पे बनाओ, आप उसकी हालत से देख के पहचान लेंगे कि ये मुस्लिम मैनेजमेंट के अंदर है। आज हमने अपने अंदर से ही ऑर्गेनाइजेशन निकाल दी जिसको फहम यूज उन कहते हैं, इसलिए आज हम परेशान हैं। जो दीन पढ़े उसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, इल्म के लफ्ज को हमने सिर्फ अल इल्म पे जोड़ दिया। हम कहते हैं नहीं, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, एक ज़ईफ़ रिवायत है लेकिन बड़ी मारूफ है, उस हदीस को हमने सिर्फ दुनियावी इल्म पे रख दिया। लेकिन यहां से आपको अब इनका तरीक़ाकार दिखेगा। समझ लीजिए एक आइडियल सोसाइटी कौन सी होती है, चाहे वो एक छोटा सा इदारा हो, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे मुस्लिम मुल्क हो। इस दुनिया की बड़ी सुपर पावर अगर मुसलमानों को बनना है तो हर बंदे को उसका फील्ड समझ आना चाहिए, अलग अलग हो, फिर दीन की असल का पता हो। यानी आप अब एक सवाल बना के उसके पॉइंट्स लिख लें कि मुसलमान जवाल से कैसे ऊपर आए, मुसलमान कैसे गालिब हो। नंबर एक, क्लासिफिकेशन। मुआशरे में से आलिम, जाहिल, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल, हर बंदे को अलग करें। फिर दीन की असल हर एक को बताओ। वही बात याद कर लें जो कुंतुम खैरा उम्मत में बात की थी, कि दीन की असल जो रूट है ना, वहां तक कुरान और सुन्नत का पानी पहुंचा दें। तीसरी बात यह कि हलाल और हराम का फर्क हो। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए करें, किसी बैंक में जाएं, ये पता हो कि मेरे इस काम के अंदर हलाल किधर है और हराम किधर है, लिमिट्स क्या है मेरी। फिर अगली चीज, दीन के अंदर रिसर्च करने वालों को दुनियावी उलूम का भी पता हो, जब वो इल्म और अल इल्म को जोड़ दें। ये ना हो कि मस्जिद में तो वो बैठ के बाल की खाल निकाल सकें, ग्रामर की इतनी ज्यादा तत्बीक करें एक एक आयत पर कि मजा आ जाए, लेकिन बाहर निकलें तो उनको हो सकता है कि एक छोटी सी न्यू इन्वेंशन के बारे में पता ना हो। होगा कैसे ये आइडियल सिचुएशन है। तरीकेकार ये कि हर फील्ड से कुछ लोग आए, थोड़ा अरसा एक जगह रहें, कुरान पढ़ें, एक बेसिक नॉलेज हासिल करें। वही सूरह तौबा की आयत, फलाउल नफर मिन कुल्ली फिरकतिन ताइफतन, हर गिरोह में से एक छोटा गिरोह निकले, फिर बैठे सीखे, वो जिसको आप कहते हैं कि महारत हासिल करें, और उसके बाद अपने अपने शोबे में जाएं और उसको फैलाएं। हर बंदे के हाथ में इस किताब को दे दें, आप फिर देखेंगे आज मुस्लिम तरक्की का रास्ता क्यों रुका हुआ। जाहिद हूं बिही जिहादन कबीरा की कोशिशें वो नहीं है जो करनी चाहिए। ये किताब हर बंदे की रीच में कर दें, ये खूबसूरत किताब है जिससे हम डरते थे। कब भला? सच बताएं, आपको इस किताब से डर लगता था जब आप इसको पढ़ते नहीं थे या रस्मी पढ़ते थे? कितनी जाहरी ताजीम है, हाथ धो के रखो, जुजदानों में रखो, जिस अलमारी में नीचे जूते पड़े हैं वहां ना रखो, किबला ना करो, पीछा ना करो। हम डरते थे, तकद्दस बहुत है, जैसे किसी की इज्जत तो बहुत हो लेकिन उसकी बेअदबी या उसकी नाकदरी से हम डरते हैं। हम इस किताब से डरते थे, जब आपने इसको पढ़ा तो आपको इससे मोहब्बत होगी, और जिससे मोहब्बत होती है उससे अगर ऊंच नीच हो भी जाए तो बंदा कहता खैर है, मोहब्बत में ये बर्दाश्त कर लेंगे। उस अरब किताब को आज की जुबान में ढालने की जरूरत है, जिस जुबान में बैठे। इसके लिए एक और काम मुसलमानों को करना पड़ेगा, अपनी जुबान से अलग दूसरी जुबानें भी सीखनी पड़ेंगी। अगर आप कोई नई जुबान सीखते हैं ना, इस सोच से कि मैं इस जुबान में तबलीग करूंगी, तो वल्ला ही जितना आपको कुरान के लफ्जी तर्जमे का अजर है ना, उतना अगर ना भी दे, लेकिन अल्लाह आपकी उस कदर को कुरान फहमी की कदर डालेगा कि आप उस जुबान को सीखें। और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे ये कहते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं, खास तौर पे नॉर्वे जितनी देर में थी, तो ये कहते थे कि जब तक तुम वहां की जुबान नहीं सीखोगी तुम कभी भी पूरा फायदा नहीं उठा सकती। तुम कितने को लोगों को इधर जानती हो, कितने को लोग उर्दू है, तो तुम तो उनको बात करोगी। तो मैंने कहती थी नहीं, मैं उनको सिखाऊंगी जो वहां की जुबान बोलने वाले, वो आगे उनको सिखाएंगे। मेरी तो कुछ लिमिटेशंस है लेकिन मैं खुद इसको मानती हूँ। अगर आज यहां बैठ के मैं उर्दू में आपको दर्स दे रही हूं तो आप मेरे सामने हैं, और अगर मैं कॉन्फिडेंटली अच्छी इंग्लिश में बात करूं तो आप सोच सकते हैं कि आपसे कितने गुना ज्यादा लोग आ सकते हैं। ये अलग बात है कि आए कौन, क्योंकि उर्दू वाले भी तो सारे नहीं आते ना, लेकिन स्कोप बढ़ जाता है। कई जगह से इस किस्म की इन्विटेशंस होती हैं हमारे पास, शर्त उसमें यही होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज है। बड़ी कॉन्फ्रेंसिस हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। तो याद रखिए कि जुबान सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर मौका मिले तो मैं तो ज़रूर कोई ऐसी ज़ुबान सीखूँ, और शायद अल्लाह इसका मौका कभी बना भी दे कि मैं पहले आप लोगों से इन चीज़ों से फारिग होकर पहले मैं अब अपनी इस्लाह की कोशिश करूँ, ताकि वहाँ तो बात पहुँचे जहाँ ज़रूरत है। आज भी हमारी कौम के पास हीरे हैं, टैलेंट है, मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम जवान, बड़े सब हैं, ज़रूरत है उनको उभारने की। वो कहते ना, कह रहे ना कि ज़रा नम हो तो मिट्टी जरखेज़ है। तो ज़रूरत है इस बात की कि आज अपनी नस्लों में हम इस दीन का शौक लाएं, और ये ज़ुबान को बैरियर भी ना बनाएं कि ये अरबी वाली उर्दू वाले नहीं सीख सकते, उर्दू वाले इंग्लिश वाले नहीं सीख सकते। आपको हैरत होगी जितने लोगों ने दीन की और ख़ास तौर पर हदीस की खिदमत की है, वो कौन थे आपको बता? गैर अरबी लोग थे। इमाम बुखारी अरब में पैदा हुए थे, अब तो आपको रट जाना चाहिए। इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिजी गैर अरब लोग थे, उन्होंने इस किताब को समझा। उनको ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि चूंकि हम अरबी नहीं जानते इसलिए कुछ नहीं कर सकते। असल बात यह कि नेक नियति हो, इखलास हो, अल्लाह के लिए। किसी के सर पे एहसान नहीं कि हम नहीं करते आपका काम, नहीं, अल्लाह को भी नहीं बंदा कहता और बंदों को भी नहीं कहता। और आपको पता है कि इमाम बुखारी जिन्होंने अपनी किताब में पहली हदीस क्या लिखी कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, और ये सच है। और अगर आपको भी अल्लाह कभी किसी मौके पे मौका दे देना कुछ लिखने का, किसी मौजू पे छोटी बात लिखे बड़ी, पहली हदीस ये लिख लें कि इन्नमल आमाल बिन्नियात। ये जितनी बातें हम यहाँ बैठ के करते हैं ये बिल्कुल बेकार हैं अगर हमारी नीयत ठीक नहीं, हमारे अंदर नहीं। ना उन्होंने तारीख में नाम लिखवाने के लिए ये काम किया, ना किसी किताब में नाम था, ना उनको कोई अवार्ड चाहिए था। क्या फायदा उस तारीख का जो खुद भी खत्म हो जाएगी, असल नाम अल्लाह के सामने लिखा जाएगा। तो जरूरत इस वक्त की कि आज हम इसको समझें। और किसी भी ग्रुप में जो यूथ होती है ना, जैसे आपके इस कोर्स की जो यूथ है, वो कल क्यामत के दिन ज्यादा जवाब दे अल्लाह के सामने, इस सोच में कि उनको कुरान की वो दौलत दी गई कि जिसको लेकर वो जाने कहां से कहां पहुंच सकते थे। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, बड़ी उम्र के हैं, बच्चों वाले, घरों वाले, बूढ़े हैं, नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आपने वहां पहुंचना है। तो जितना इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसमें, आप देखिएगा कि फ़ायदा क्या होगा कि मुसलमान फैलेंगे। अल्लाह ताला ने ये बात करके कि फ़हम यूज़ान, हम सबको सोचने की दावत दी। और ये सच है कि ये चीज़ जब दिल में आ जाती ना, फिर उसके बाद इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं दिखती। वो कहता है कि मेरे मालिक, तूने जो कुछ मेरे लिए कर दिया, मेरे लिए ये बहुत है।